Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
इतनी पढ़ाने के बाद भी संतोष नहीं हुआ तो कहते हैं कि ब्राह्मण अभी अमुक ब्राह्मण है, अमुक गोत्र, अमुक प्रवर है, उसको ऐसा विद्या पढ़ाते हैं कि पढ़ते पढ़ते इतना साक्षर हो जाता है कि कहता है बस मैं तो अमुक का बेटा हूं। दूसरा आता है कहता है बिल्कुल झूठ बोला, कोरा झूठ, तू बेटा नहीं, तू हमारा भतीजा है। मैं जब आऊं पूछू तो कहना कि मैं आपका भतीजा और आप हमारे चाचा। ये जितने लोग आते हैं ना, इसके बाद मामा आया, उसने कहा कि सब झूठ बोल रहे, तू ना जो है किसी का भतीजा है न तू बेटा है, तू मेरा शुद्ध भांजा लगता है, मैं तेरा मामा हूं। महाराज दुनिया वाले इतने पढ़ाई पढ़ा देते हैं ना कि हम जो है निशेष हो करके भी सविशेष हो जाते हैं और फिर जीवन भर नाचते रहते ही नचाते हैं। मामा ये भांजे की रस्सी से नचा रहा है तो चाचा भतीजे के तो दुश्मन भी आता है, कहता देख मैं तेरा दुश्मन हूं। इतने गले में ये रस्सियां बंध जाती है, हम जीवन भर नाचते रहते और दिन पर दिन बढ़ती जाती है रस्सियां, घटती नहीं है। एक केवल वेदांत ऐसा है जो आपको साफ साफ कहता है कि तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्विशेष चैतन्य हो। ये तो मतलब के लिए उपाधियों को लोगों ने जोड़ दिया है, मतलब जानते हैं ना, जिसे किसी से काम निकालना हो तो हम लोग जो है उसकी बड़ी तारीफ कर देते हैं। तो यहां पर भी निर्विशेष चैतन्य है, उस पर हलाहल विषमल अविद्या का आरोप। ऐसे जीव निर्विशेष चैतन्य है, इसके ऊपर नाम रूप आदियों का आरोप हो गया। आरोप होने के बाद कामना होती है और काम का दान भी भगवान शंकर ही करते हैं, जिस 15वें श्लोक में बतलाया गया है कि सिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवा सुर नरे। यह जो कामना है वह कामना चाहे देवता हो या असुर हो या नर, कहीं पर भी इसकी अबाध गति है। जब तारकासुर पूरे ब्रह्मांड को पीड़ा पहुंचाने लगा और भगवान शंकर से वरदान प्राप्त होके अमर के समान हो गया था, ब्रह्मा जी ने वरदान में एक बात कही थी कि तुझे केवल शंकर पुत्र ही मार सकते हैं, और उदंड हो गया। उसे पता था कि सती का दाह होने के बाद भगवान शंकर हिमालय पर समाधि लगाकर बैठे हुए हैं, न भगवान शंकर के जल्दी समाधि खुलेगी, न ब्याह होना है न पुत्र होना है, निश्चिंत रूप से वह संसार में उत्पात मचा रहा था। सारे देवता पीड़ित होकर के भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर बिल्कुल समाधि में बैठे हैं, अपने स्वरूप चिंतन में तल्लीन है। देवताओं ने कामदेव को पुकारा, बहुत तारीफ किया। राजस्थान में चंग चढ़ाना बोलते हैं ना, किसी से काम निकलना तो चंग चढ़ाते हैं। खूब तारीफ किया कि देखो भाई इस समय तुम ही यह काम कर सकते हो, तुम्हें हम लोग बहुत इनाम देंगे। अब कामदेव भी देवताओं की बात में आ गया, पहले तो मना किया कि भगवान शंकर के समाधि को खोलना अर्थात सीधा अपनी मौत को पुकारना है। पर जब सबने कहा, भगवान विष्णु ने भी कह दिया कि ये तो केवल तू ही कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, हम लोग तेरे सहायक बनेंगे, तू जो हमारा नेता है, किसी को नेता बना दो ना, जो नेता बनता उसको मालूम है, गिरीश भाई को मालूम है कि व्यवस्था में स्वर्ण रजत महोत्सव मनाने में कितनी तकलीफ पापड़ बेलनी पड़ती है। हमारे यहाँ साधुओं की भाषा में बोलते हैं पापड़ बेलना, पापड़ बेलने में बहुत मुसीबत होती, लोग तो आराम से एक सेकंड में अग्नि पर रख के पापड़ सेक के खा लिए, सबसे आसानी से पापड़ खाना होता है, उन तो बेलने में कितनी परेशानी। वैसे महोत्सव को मनाने में कितनी परेशानी, पर किसी को नेता बना दो ना, खुद आनंद से वो मनाता है, उत्साह रहता है। हमारे यहाँ जब किसी महात्मा से काम लेना हो तो उसको मंत्री महामंत्री बनाते हैं। ये कुठारी शब्द पुराना हो गया ना, तो कुठारी से उसको बुरा लगता है, हीन भावना होती है। काम तो पूरा कुठारी का ही है, वही जो व्यवस्था है, नमक में दाल चेल देख रेख वही काम है, परंतु कुठारी शब्द को विकसित करके उसको मंत्री महामंत्री से पुकार तो खुश होता है, मैं मंत्री हो गया महामंत्री हो गया, काम निकालना है। ऐसे ही जो यहाँ पर भी कामदेव से काम निकालना था, तो देवताओं ने कहा कि देखो तुम हमारे नेता हो। भगवान विष्णु ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। सब जो है हिमालय पहुंचे, वहां भगवान शंकर समाधि लगाए हुए हैं। तुरंत काम बाण का अनुसंधान किया, अनुसंधान करते ही भगवान शंकर की आंख खुली। जैसे हम लोग नींद से जब जगते हैं तो नींद में हमारे आंख में खुमारी होती है, खुमारी मतलब की आधी नींद होती है, थोड़ा बंद होता है, थोड़ा नींद का असर होता है, तो समाधि का असर दाहिने आंख में है और काम बाण के कारण से बाएं आंख में भगवान शंकर के श्रृंगार रस है, बाजू में पार्वती जी सेवा कर रहे उनको भी देख रहे, और तीसरे नेत्र से विचार किए, तीसरा मतलब ज्ञान नेत्र। कितने दिन से पार्वती हमारी सेवा कर रही परंतु कभी भी कामना नहीं हुआ, आज अचानक कैसे हुआ? क्योंकि तो इसके मन में कोई कामना नहीं हो सकता ना, मेरे मन में हो न हो किसी तीसरे व्यक्ति का काम होगा। भगवान जब दृष्टि दौड़ाए तो बस कामदेव धनुष बाण फेंक दिया, ताकि हमने नहीं किया है, मैं तो आपके दर्शन के लिए आया था, जैसे देवता लोग खड़े पंक्ति वैसे मैं भी दर्शन कर रहा हूं। पर भगवान शंकर समझ गए कि कामदेव का ही काम है, बस तत्काल उस ज्ञानाग्नि से कामदेव भस्म हो गया, तब से कामदेव अनंग हो गया। तो देखो भगवान शंकर के पास यदि काम पहुंचा तो उसका नाश हुआ, तो हमारे जीवन में भी जब अविद्या के बाद जब काम हो और कामना से जब परेशान हो तो ये कहीं सहारे हैं भगवान शंकर। इसी बात को उपनिषद के मंत्रों में बदलाया है कि आत्मकामः, सबसे पहले आत्म काम होना चाहिए, फिर अकामा आप्त कामा शोका अनंतरम। जीवन में कामनाओं से शोक हो रहा हो, विषाद संतप्त हो रहे हो, तो सबसे पहले आत्मा की शिव की कामना करें। जैसे कामदेव भगवान शंकर के पास गया तो पहुंचते ही काम का नाश, और नाश होने के बाद भी 15वें 16वें श्लोक में ज्ञान गंगा का अवतरण वर्णन है। तो हमारे जीवन में भी ये जो कामदेव की बाणे है ना, विशिखा, विशिखा शब्द का अर्थ होता है विविध प्रकारेण शिखा विशिखा। एक दीपक की शिखा होती है, मोमबत्ती की शिखा होती है, और ये कामदेव की ऐसी विशिखा है कि संसार में सर्वत्र विजयी होती है, कहीं पर भी जाए देवलोक। जब ब्रह्मा के पास कामदेव गया जमाने के लिए, बेचारे ब्रह्मा ही मुग्ध हो गए, इंद्र ही मुग्ध हो गए, अहिल्या के सतीत्व का भंग किया, वैसे ही भगवान शंकर को समझा कि जैसे ब्रह्मा है इंद्र है ऐसे जो है इनको भी हम वश में कर लेंगे। उपनिषद में जहां प्राणोपासना है वहां पर कहा है प्राण एव ब्रह्म, तो वहां पर जब उद्गीत कर्म प्रारंभ होता है तो जैसे उद्गीत कर्म प्रारंभ वैसे ही असुर लोग आक्रमण करते थे। पहले उद्गान वाणी ने किया तो वाणी को असुरों ने विद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, इसके बाद आंख ने किया, कान ने किया, सब ने किया, अंत में प्राण ने उद्गीत कर्म प्रारंभ किया। तो जिस प्रकार से पत्थर के पास मिट्टी के ढेले जाते हैं चकनाचूर हो जाते हैं, ऐसे ही प्राण के पास जब असुर गए तो वहां जाते ही समाप्त हो गए। ऐसी कामदेव ने सोचा कि अन्य देव असुर मनुष्य के समान ये हमारे बाण भगवान शंकर को भी वश में कर लेंगे, पर हो गया विपरीत। कल हमने आपको सुंदर का चरित्र सुनाया था, शेष था ना, तो सुंदर के जीवन में एक घटना घटती है कि एक बार तो भगवान शंकर ने अपने प्रिय भक्त जैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन भी थे, उद्धव जी भी थे, कई थे, ऐसे ही सुंदर को भगवान शंकर ने शिव मित्र नाम दिया, तो हमारे मित्र हो, जब चाहे तब तो हमारे सामने आ सकते हो, क्यों मित्र के लिए कोई नियम नहीं होता है, वह नहा धोकर आए, बिना नहाए आए, कैसे भी आ जाए, भक्त के लिए नियम होता है, शिष्य के लिए नियम होता है कि नहा धोकर आए गुरु के पास। परंतु भगवान ने सुंदर को सीमित नाम दिया कि तुम हमारे मित्र हो और कभी भी आ सकते हो। तो सुंदर जब जवान हुआ तो एक दिन पुष्प वाटिका में पूजा के लिए पुष्प तोड़ने गया, उधर से एक परवा नामक गणिका की कन्या भी पुष्प लेने आई थी। संयोग से जैसे ही सुंदर ने उस परवा नामक वेश्या कन्या को देखा, मुग्ध हो गया। उसका सौंदर्य इतना सुंदर था कि अपने आप को रोक न सका, उधर परवा भी इसको देखकर मुग्ध हो गई। इसके बाद वहां से दोनों अपने अपने घर गए। इधर सुंदर के मन में उसका सौंदर्य इतना हलचल उत्पन्न कर दिया कि वह भगवान शंकर के मंदिर में जाना भी छोड़ दिया, पूजा भी छूट गया। तीन चार रोज से उसी का चिंतन करते रहा, ये काम ऐसी है ना कि बड़े बड़े को मुग्ध कर देती है। मुग्ध का मतलब कि मुह धातु वैचित्र्य अर्थ में है, जब काम जीवन में आता है तो हमारा चित्त वैचित्र्य, वैचित्र मतलब विविध प्रकार के उसी के रूप का श्रृंगार के आकार प्रकार के चिंतन में डूब जाता है। भगवान शंकर ने देखा चार रोज हो गए अभी तक सुंदर नहीं पधारा, क्या कारण है। स्वयं ही भगवान शंकर ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके घर जाते हैं, भगवान शंकर के आते चरणों में गिर जाता है। उसने कहा यदि मुझे परवा नहीं मिलेगी तो मैं भूखे प्यासे शरीर को छोड़ दूंगा। अब क्या करे, जैसे अर्जुन ने कहा ना कि हमें अभिमन्यु का दर्शन कराओ, मेरा बहुत प्यारा पुत्र है। पूरा गीता ज्ञान सुनने के बाद भी जैसे कभी कभी आकाश में बादल सूर्य को ढक देते हैं, अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, फिर भी महाभारत के बाद अर्जुन एक बार प्रार्थना किया कि आप कृपा करके एक बार मेरे लाडले अभिमन्यु का दर्शन करा दो, उससे कुछ बात कर लो। जब वहां गए तो अभिमन्यु ने कैसा सत्कार किया, एक तमाचा जड़ दिया, बोला कि कितने बार तू हुआ, मैं हुआ, बाप बेटा, इस संसार का कोई अंत ही नहीं, और गीता ज्ञान सुनने के बाद भी तुझे लगता है कि मैं तेरा बेटा, तू मेरा बाप, या ज्ञान अभी तक गया नहीं। वह तुरंत लौटे। ऐसे ही यहाँ सुंदर जीवन में घटना घटी, सुंदर ही भगवान के चरणों में गिर गया, प्रार्थना करने लगा कि आप सब कुछ करने में समर्थ हैं और मैं जीवन में केवल एक ही चीज आपसे मांगता हूँ, अभी तक हमने कुछ भी नहीं मांगी थी, वह यह है कि हमारा परवा से ब्याह करा दो। अब जिद ठान लिया, इसे कोई बच्चे जिद करते हैं ना। भगवान शंकर बहुत समझाए कि देख इसमें कोई रस नहीं, आनंद नहीं। बोला कि कुछ भी हो एक बार, बस केवल एक बार मेरा ब्याह करा दो, इसके बाद मैं आपकी पूर्व सेवा करता रहूंगा। बोले ठीक है, जब तेरा यही आग्रह तो तेरा ब्याह करा देते हैं, पर बाद में रोना नहीं। बोला महादेव मैं सब संभाल लूंगा, एक बार ब्याह मेरी हो जाए, जैसे नारद जी ने कहा था ना भगवान विष्णु से। उधर भगवान शंकर एक ब्राह्मण का वेश बनाकर अर्धरात्रि में परवा के घर पधारते हैं, वहां जाकर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं, कहते हैं दरवाजा खोलो। परवा खोलने गई तो उसकी मां ने रोक दिया कि रुक जा, मैं देखती हूं कौन है। उसकी माँ ने कहा कि जिसकी तू याद करती है शायद वही पधारा होगा, पर मैं देख लूं कौन है। परवा आई तो पूछी तुम कौन हो, तो भगवान शंकर जो ब्राह्मण वेश बनाकर आए हुए हैं उन्होंने कहा कि मैं हूं तेरा गुरु पुजारी मंदिर का। और इतनी रात्रि मर्द रात्रि में कैसे पधारे, चार पांच घंटे के बाद स्वयं मैं आपके मंदिर में आती, बोले कुछ विशेष काम था। परवा की मां ने कहा कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि अर्धरात्रि में किसी घर पधारना इस तरह। बोले इसकी तो चिंता छोड़, मैं विशेष काम से आया हूं। बोले काम बताइए। उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि सुंदर के साथ तेरी कन्या परवा का ब्याह होना चाहिए, और बड़ा अच्छा ये संयोग है, सुंदर भी चाहता है तेरी कन्या, परवा भी उसको चाहती है। परवा को जब बुलाया तो परवा ने कहा कि ब्याह इसी शर्त पर होगी जब साक्षात भगवान कह दें कि ब्याह होवे। जो आपके कुल देवता मंदिर के जो भगवान शंकर हैं, वे आकर स्वयं जब कहें तब विवाह होगा। ब्राह्मण देवता ने कहा चिंता मत कर, बस थोड़ी देर में वे भी आएंगे। इधर जो है भगवान शंकर बाहर के दरवाजा बंद हुआ, पांच मिनट के बाद शंकर थे ही आ गए। बोले कि देख हमारा आशीर्वाद है, तुम दोनों अपना नया जीवन प्रारंभ करो। पूरे गांव में सपना दे दिया कि सुंदर परवा का ब्याह होना चाहिए। प्रातः काल होते ही अपना विधिवत दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद आप जानते हैं ना कितना सुख होता है, एक साल के अंदर पूरा सुख समाप्त, आकाश उड़ जाता है। कई लोगों सबने पूछा, ऐसी बात नहीं। तो विवाह हो गया, विवाह होने के बाद कुछ दिन के बाद सुंदर को अपने गलती वाला पश्चाताप हुआ। अब विवाह होगा, फिर बच्चे होंगे, फिर उसकी जिम्मेदारी आएगी। पहले तो आपको अकेले की जिम्मेदारी थी, वो अक्चुअल इतनी थी कि आपको बस कपड़ा मिल जाए, भोजन मिल जाए, पर्याप्त है। परंतु विवाह होने के बाद पत्नी की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी। आप लोग बहुत अच्छे हैं, महावीर हैं, बलवान हैं, हम लोग तो भगोड़े से संसार से। हमारे कैलाश के दशम पीठाचार्य कहते थे कि सन्यासी लोग हम लोग भगोड़े हैं, हम लोग जिम्मेदारी संभाल न पाए तो छोड़कर सीधे आ गए। तो आप लोग महावीर हैं। इधर जो सुंदर ही पछताने लगा, जाकर भगवान के चरणों में गिर के रोने लगा कि हमसे बड़ी भूल हो गई, हमने ब्याह कर लिया, अब जो है समय से आपकी प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ, उठ नहीं पाता हूँ। अब पत्नी कहते कि ये करो करो, ये भी झमेला खड़ा हो गया। जब विवाह हो जाएगी तो पत्नी की बात सुनना ही पड़ेगा। आप माता पिता की बात इनकार कर सकते हैं, काम चल जाता है, माता पिता सहन कर लेंगे, पर श्रीमती सहन नहीं करेंगी, वो तो बार बार कहती रहेंगी। अब बेचारा रोने लगा। भगवान शंकर ने कहा कि चिंता की बात नहीं, कुछ समय के बाद तेरा उद्धार होगा। इधर एक दिन अजीब घटना घटी। सुंदर को भगवान ने कह दिया कि तू चिंता छोड़, जब भी तुझे समय मिले नहा कर बिना नहा कर तो मंदिर में आकर के अपने नए स्तोत्रों से मेरा स्तवन किया कर। एक दिन सुंदर जल्दबाजी में, समय बहुत अधिक हो गया था, बिना नहाए ही मंदिर में प्रवेश करके आंख बंद कर स्तुति गान प्रारंभ कर दिया। वस्त्र व्यस्त व्यस्त थे, मुख में अभी पान की समझो की लालिमा थी, आंख में कीचड़ थी। मंदिर का रक्षक जिसका नाम था वीर मित्र, वह दूर से देख रहा था, उससे रहा नहीं गया। बोले कि कैसा धूर्त है, बिना नहाए धोए मुख में पान चबा रहा है, और कपड़े अस्त व्यस्त, आंख में कीचड़ है, और आंख बंद करके स्तुति शुरू कर दिया। अपने हाथ में परसु लेकर दौड़ा, बोला कि जल्दी निकल नहीं तो तुझे काट डालूंगा। भी जब रक्षक दौड़ा तो डर के मारे सुंदर जो है कपाट अंदर से बंद कर लिया। जब कपाट बंद कर लिया, भगवान को पकड़ लिया कि क्षमा करे हमसे भूल हो गई, या आपका द्वारपाल मुझे मार डालेगा, दरवाजा खोलूंगा तो आप मुझे सद्बुद्धि दें। भगवान शंकर ने अंदर से कहा कि मित्र वीर मित्र तू चिंता मत कर, ये हमारा अनन्य सखा है और भक्त भी है और हमारे आदेश से इस प्रकार से मंदिर में पधार रहा है, इसलिए मंदिर तुम्हारा पवित्र नहीं हुआ है। इतना सुनते ही द्वारपाल और आग बबूला हो गया, बोला कि आप जगत गुरु कहलाते हैं, आप संसार के शासक है, नियमन करता है, और आप ही जब ऐसे धूर्तों को मंदिर में बैठाएंगे जो कि माता जी अंदर बैठी है और आप अकेले हो, तीसरा कोई है नहीं, तो लोग विश्वास कैसे करेंगे? तुम दोनों जल्दी से बाहर निकल लाओ, अभी सुबह का समय है। भगवान शंकर को भी डांट दिया, आप भी निकलो। देखो भक्तों की ऐसी जो है ना प्रतिभा होती, प्रभाव होता है। ज्ञानी नहीं डांट सकता है, पर भगत भगवान को जैसा चाहे वैसा नचा सकता है। गोपियां तो भगवान को पाव भर छांच में नचाती थी, जिससे सारा दुनिया नाचता है उसको नचा रही गोपियां। यहां पर भी भक्त ने कहा कि आप भी बाहर निकल आओ, क्योंकि मंदिर आपने शुद्ध कर दिया, हमें सफाई करनी पड़ेगी। अब जो है उत्तर दिशा से दरवाजा खुल गया, भगवान शंकर की पिंडी मंदिर के बाहर स्थापित हो गई और सुंदर वय से तेजी से भगा, भागते भागते वहां सबने गांव पहुंच गया। इधर जब देखा वीर मित्र कि दरवाजा पूरब का बंद है, उत्तर दरवाजा खुल गया और शिवलिंग भी बाहर स्थापित हो गया, उसके मन में उस भगवान के प्रति बड़ी नफरत हो गई कि भगवान बड़े पक्षपाती हैं और अपने भक्त के लिए, मित्र के लिए इन्होंने दूसरा दरवाजा खोल करके और बाहर भगे। उसने प्रतिज्ञा किया कि आज से मैं इस जो यहाँ के देवता कमलानाथ हैं, कभी पूजा न करूंगा न दर्शन करूंगा, बड़े कभी यहाँ पर प्रवेश भी नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके वहां से कहीं बाहर चला गया और कुछ दूर जा करके छोटा सा मंदिर बना करके वहीं पूजा शुरू कर दिया। इधर भगवान शंकर अपने भक्त की परीक्षा के लिए एक दिन बूढ़ा ब्राह्मण का वेश धर के आते हैं कि सही में इसने जो प्रतिज्ञा किया है वह अटल है कि नहीं, भगवान परीक्षा लेते हैं। ब्राह्मण का वेश बनाकर आ गए। उसका नियम था कोई भी यदि द्वार पर आए तो उसका चरण धो करके और उसको भोजन कराना, पर एक शर्त था, वह पूछता था कि आप कहां से पधारे हैं। यदि बोल दे कि मैं कमलानाथ के यहां से आया हूं तो सीधा पैर भी काटता था, यह भी नियम था। ये बाएं हाथ में परसू लगता था, दाएं हाथ से पैर धोता था और अपने पत्नी को लगा रखा था जल गिराने के लिए। तो पत्नी बहुत चतुर थी, पत्नी पहले ही सबको पूछ ले अभ्यागतों से कि आप यदि कमलानाथ पुरुष आए हैं तो झूठ बोल देना, कहीं और का बता देना, अन्यथा हमारे पति देवता आपके पैर काट डालेंगे या चले जाना। अब ये जब ब्राह्मण पहुंचे तो पत्नी ने कहा कि आप यदि कमलानाथ पुरुष आए हो तो झूठ बोल देना या चले जाना, नहीं तो हमारे पति देव पैर काट डालते हैं। इस ब्राह्मण ने कहा कि देख देवी, मैं तो कमलानाथ पुरुष आया हूं, मैं परम सही हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता, मुझे जोर से भूख भी लगी है, मुझे भोजन भी करना है और तेरे पति देवता बड़े अच्छे शिव के भक्त हैं, मैं बिना भोजन किए नहीं जाऊंगा और झूठ भी नहीं बोलूंगा। अब पत्नी घबराई, पत्नी ने चालाकी किया, परसा को छिपा दिया दूर। जैसे ही आए पैर धोने लगे, पूछे कि आप कहां से पधारे हैं, बोले कमलानाथ पुरुष आया हूं। बस सुनते ही वीर मित्र आग बबूला हो गया, बोला कि परसा लाओ, इसका पैर काटते हैं अभी। अब परसा डोले मिले ही नहीं कहीं, तो डंडा उठाया, बोले किसी से पूजा करे। भगवान शंकर ब्राह्मण वेश में भगे पीछे पीछे और ये डंडा लेकर के धनुष बाण पीछे पीछे दौड़ रहा। भगवान शंकर भागते भागते कमलानाथ क्षेत्र में प्रवेश कर गए। जब प्रवेश कर गए तो दूर से ही धनुष बाण से अनुसंधान शुरू कर दिया, मारने लगा। भगवान शंकर भी बाण चलाने लग गए, भयंकर संग्राम। कि भगवान शंकर ने देखा कि अपने प्रतिज्ञा पर अटल है, एक तरफ भगवान शंकर का नाम भी लेता, दूसरे तरफ कहता है कमलानाथ पुर से कोई भी आएगा तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अंत में भगवान को हार करके वही दर्शन देना पड़ा। देखो भगवान ऐसे हैं या अपने भक्तों के भय को दूर करते हैं। इसलिए इनका यह सार्थक नाम है भुवन भय भंगक व्यसनिना। यदि आपको संसार से भय लगता हो, मौत से भय हो, कामना से पीड़ा हो, तो अपने कामना को यदि आप भगवान शंकर के चरणों में समर्पित करेंगे तो वह कामना नष्ट हो जाएगी, आत्म काम हो जाएंगे, परिपूर्ण काम हो जाएंगे और जीवन में सुख शांति की उपलब्धि होगी। शेष कल विचार करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।